धवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर चार। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, अन्ताय मच्छहीनं, दसद्दसय चावदीहिरं पडमजिनं, वोच्छं नमिऊणन्तरम् अनंतरुत्तुंगसन्नमयिदुग्गेजम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है, उसमें अपना अंतरानुगम चल रहा है, और पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर हम आ गए। 31 तुम्हारी पुस्तक लावी? अच्छा, वन मोमेंट। हाँ, अपने यहाँ अंतर का विषय चल रहा है। अंतर, हमने गुणस्थानों में अंतर देखा था, अभी मार्गणाओं में हम गति मार्गणा की बात चल रही है। नरक गति में हमने गुणस्थानों का अंतर देखा था, नारकियों में विशिष्ट गुणस्थानों का अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा, ये बात हो गई। अभी आज तीर्यंचों की बात देखेंगे। अब यहाँ 35 नंबर का सूत्र जो है वो बोल्ड होना चाहिए, वो साधारण लेटर में ऐसे लेटर में लिखा है। 35 नंबर ऊपर सूत्र हमेशा बोल्ड होते हैं, वो ऐसा साधारण लिखा गया है। देखो, पढ़ेंगे वहां से। तिरिक्ख गदिये तिरिक्खेसु मिच्छा दिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चन अथ्य अंतरम निरंतरम। तीर्यंच गति में तीर्यंचों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। अभी ये समझ में आवे ऐसी बात है, मिथ्या तो गुणस्थान में हमेशा ही पाए जाए, चारों ही गति में होंगे, हर गति में यही बात करेंगे। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतो मुहूर्तम। तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। मिथ्यात्व का अंतर है, उसको सम्यक्त्व में भेज देना और फिर वापस आएगा, तीसरे में या चौथे में जाएगा, वापस मिथ्यात्व में चला आएगा, क्योंकि तिर्यंच मिथ्या दृष्टि वो पहले से तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, पांचवे में भी जा और वापस फिर आएगा। वो हमने जो कंडीशन है कि बहुत बार उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गया, ऐसा वाला जीव लेना है, क्योंकि तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव को अन्य गुणस्थान में ले जाकर, अन्य में यानी कहाँ जा सकता है, तिर्यंच है तो तीसरे में, चौथे में या पांचवे में, सर्व जघन्य काल से पुनः उसी गुणस्थान में लौटा ले जाने पर अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर प्राप्त होता है। अब 32 पृष्ठ पर आते हैं। उक्कस से न, वही एक ही जीव की अपेक्षा बात करें, तिन्नी पलिदो व मानी देसुनानी। देखो, ये मिथ्यात्व का अंतर देख रहे, चौथे गुणस्थान का नहीं। चौथे गुणस्थान का अंतर होगा तो मिथ्यात्व का काल सुनना है, और मिथ्यात्व का अंतर देखना है तो उसको ऊपर के गुणस्थानों में भेजना है, चौथे गुणस्थान में भेजना है, तीर्यंच में रहना चाहिए, और मिथ्यात्व में से सम्यक प्राप्त कर वापस मिथ्यात्व में आना चाहिए। ये कब होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि तीर्यंच हो जाएगा तो सम्यक दृष्टि तीर्यंच फिर सम्यक्त्व के साथ तीर्यंच में नहीं जन्मेगा, इसलिए उसका एक ही भव ले सकते हैं। मिथ्यात्व में था और फिर समय तो प्राप्त किया और फिर वापस मिथ्यात्व में भी लाना चाहिए, तो ऐसा कहाँ हो सकता है भोगभूमि में, क्योंकि वहां की आयु 3 पल्ले की है। वहां तिर्यंच जन्मा तो मिथ्यात्व में था, तो जन्मने के बाद अभी वो तो गर्भस्थ तिर्यंच है, तो यथा योग्य काल में उसने समय तो प्राप्त किया तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। वहां से तो देव में जाते हैं सारे जीव, तो जाने के पहले, मरण के पहले फिर मिथ्या तो मिलाना। इसलिए तीर्यंच की मार्गना है, इसलिए देव में नहीं भेजना, तीर्यंच ही रखना है। तो तीन पल्ले के स्टार्टिंग में कुछ अंतर्मुहूर्त के अंतर्मुहूर्त में कुछ महीनों के बाद उसको समय को प्राप्त हुआ, क्योंकि गर्भ का काल भी गिनना है उसमें। और अंत में एक बार मिथ्या तो, पहले तो मिथ्या तो में था ही था, सम्यक तो प्राप्त हुआ तो मिथ्या तो का अंतर चालू हो गया, वापस मिथ्या तो में लाया तो अंतर समाप्त तो हुआ। अब यहाँ पढ़ेंगे, अब मैंने देखा तिन्नी पलिदोमानी देसोनानी तिरियंच मिथ्या दृष्टि जीवों का, वो जोगों का हुआ ना, जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्लोपम है। इसका उदाहरण, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य तीन पल्लोपम की आयु स्थिति वाले कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुआ। वह हमने ये बात पहले भी आई थी, भोग भूमि का कुक्कुट या मरकट जो है उसमें तो 2 महीने का गर्भकाल है वहां का, और 2 मास गर्भ में रहकर निकला। अभी यहाँ ना इसके बाद ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है, बीच वाला पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे। पुनः मुहूर्त पृथक्व से विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पश्चात अपनी आयु के अंत में आयु को बांध कर मिथ्यात्व को प्राप्त, पहले आयु को बांधा मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त को प्राप्त हो काल करके सौधर्म ईशान देवों में उत्पन्न हुआ। हाँ?
काल
करना है नहीं मरण, अभी बीच वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखो ये बाकी बातें हम बाद में फिर दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा ना 2 मास गर्भ से निकला, इस विषय में 2 उपदेश है, यानी 2 मत है, वे इस प्रकार है। तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ जीव 2 मास और मुहूर्त पृथक्त्व से ऊपर सम्यक और संयमासयम को प्राप्त करता है। मनुष्यों में गर्भकाल से प्रारंभ कर अंतर्मुहूर्त से अधिक 8 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर सम्यक्त्व संयम और संयमासयम को प्राप्त होता है, यह दक्षिण प्रतिपत्ति है। दक्षिण का ही दूसरा उसका जो शब्दार्थ यानी एकार्थवाची शब्द है रुजु, और आचार्य परंपरागत तीनों शब्द एकार्थक है। यह तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ जीव 3 पक्ष 3 दिवस और अंतर्मुहूर्त के ऊपर सम्यक और संयमासयम को प्राप्त होता है। ये जो कथन है वो तो कर्म भूमि की अपेक्षा लेना है, क्योंकि संयमासयम को भी लिया यहाँ पर। भोग भूमि में तो बात अलग है, वहाँ तो 7-7 दिन में, वो तो मनुष्य में होता है ना, 7 दिन में रेंगता है, फिर अंगूठा चुभता है, फिर वो आदमी खड़ा हो जाता है, 49 दिन में तो पूरी डेवलपमेंट हो जाती है वहाँ। ये जो कथन है वो तो कर्म भूमि की अपेक्षा समझना। तो तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ जीव 3 पक्ष 3 दिवस 3 पक्ष यानी 1.5 महीना 3 दिवस और अंतर्मुहूर्त के ऊपर सम्यक और संयमासयम को प्राप्त होता है। मनुष्यों में उत्पन्न हुआ जीव 8 वर्षों के ऊपर सम्यक संयम और संयमासयम को प्राप्त होता है, यह उत्तर प्रतिपत्ति है। 2 मत क्या हुए, देखो तिर्यंचों में 2 मास और मुहूर्त पृथक, मनुष्यों में अंतर्मुहूर्त से अधिक 8 वर्ष। अब नीचे देखो, अभी जो हमने पढ़ा तिर्यंचों में 3 पक्ष 3 दिवस और अंतर्मुहूर्त, और मनुष्यों में 8 वर्षों के ऊपर, इतना ही लिखा। यह उत्तर अनुरुजु और आचार्य परंपरा से अनागत, ये तीनों एकार्थवाची, ऐसे 2 मत पाए जाते हैं। अब यथा योग्य जो काल बीत गया तो विशुद्ध होकर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। ऊपर बताया ना, दो मास गर्भ से निकला, उसके बाद मुहूर्त पृथक ने कुछ मुहूर्तों में विशुद्ध होकर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। सीरियंस की बात चल रही है। पश्चात अपनी आयु के अंत में ये भोगभूमि की बात चल रही है, क्योंकि तीन पल्ले घटित करना है। आयु के अंत में आयु को बांधकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त को प्राप्त हो काल करके यानी सम्यक्त के साथ मरा। सौधर्म ईशान देवों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदि के मूर्त पृथक्त्व से अधिक दो मासों से और आयु के अवसान में उपलब्ध दो अंतर मुहूर्तों से कम तीन पल्लों कम काल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। यानी सम्यक को प्राप्त होते ही उसका अंतर समाप्त हुआ। नहीं, मिथ्यात्व को प्राप्त होते ही अंतर समाप्त हो ना, हमको पहले सम्यक तो प्राप्त कराना था, फिर मिथ्यात्व तो में लाना था। तो मेरा प्रश्न, उसको फिर सम्यक तो क्यों प्राप्त कराए? मैंने मिथ्यात्व तो में आने के पश्चात वाला काल उसका कम करना था, इसलिए कैसे है? ओहो, नहीं, उसने आयु पहले बांधी है ना, सम्यक के साथ आयु बांधी है, इसलिए उसको सम्यक होकर ही जाना है, क्योंकि मरण के समय अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो भवनत्रिक में जाता है। इसने सम्यक के साथ आयु बांधी है, तो सौदर में ईशान वाली आयु बांधी है, तो इसलिए फिर सम्यक में भेजकर फिर उसका मरण कराया। ये बारीकाइयां है ना बहुत सारी। वहां लिखा है क्या, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है? कहाँ पर? इकतीस में। हाँ, सर्वगति समय मिथ्या दृष्टियों के निकलने का क्रम था, वो तीसरे गुणस्थान के लिए था, है ना? यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि बाद में अगर आयु बांधता तो टाइम ज्यादा जाता उसका। सम्यक के साथ आयु बांधी है तो सौधर्म ईशान की बांधी है, इसलिए मरण के समय सम्यक होकर ही मरेगा, ये कहना चाहते। ये उसका कारण है, फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त कराया। वैसे मिथ्यात्व में आते ही तो उसका अंतर तो समाप्त हुआ था, तो बाद में और कितना काल बिताया उसने, तो मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त फिर सम्यक को प्राप्त किया और फिर मर गया, इसलिए दो अंतर्मूर्त कम कर दिए। तो लास्ट लाइन देखो, इस प्रकार आदि के मुहूर्त पृथक्त्व से अधिक दो मासों से और आयु के अवसान में उपलब्ध दो अंतर्मूर्तों से कम तीन पल्लवों काल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। अंतर ने वो समय दृष्टि रहा तब तक। अब 33 पेज पर आता, शासन सम्मादिथि पहुड़ी जाव संजदा संजदाप्ति ओघम। तिर्यंचों में सासादन समय दृष्टि से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक का अंतर ओघ के समान है। ओघ में क्या देखा था, जैसे सासाधन में नाना जीवन की अपेक्षा हमने देखा था, जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले का असंख्या था। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर कितना था, याद है? एक जीव की अपेक्षा साधन का जघन्य अंतर। हाँ, पल्ले का असंख्यात होगा क्योंकि दोबारा उपशम करना है। हमने देखा था वो बाद में वेदक योग्य काल होता है, उपशम योग्य काल तो जब उद्वेलना होती है तब हो जाता है। तो जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा पल्ले का असंख्यात होगा, और उत्कृष्ट अंतर हमने योग में कितना देखा था, शासाधन का अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ का। तीरियंचो में ये पॉसिबल है, अन्य कोई गति में लगातार इतने काल तक नहीं रह सकता, परंतु वो तीरियंच में ही पहली बार समय तो प्राप्त किया, तीरियंच में ही उसने दोबारा अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद वो प्राप्त किए हो सकता है। उसके बाद वो वहां से मरकर फिर आएगा, फिर मिथ्यात्व में जाके मनुष्य होकर मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि अर्लीस्ट मोक्ष भेजना है बाद में, इसलिए मिथ्यात्व के साथ मिथ्यात्व में ले जाके मनुष्य में लाएंगे और फिर उसको उसी भव में मोक्ष होगा। सम्यक दृष्टि रखेंगे तो उसको देह में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पढ़ेंगे हम तीर्यंचो में सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर संहिता संयुक्त गुणस्थान तक का अंतर ओघ के समान है। जो गुणस्थानों में सामान्य से बताया था चारों गति की अपेक्षा, वो तीर्यंचो में लागू होता है, क्योंकि ओघ के इन चार गुणस्थानों संबंधी नाना और एक जीव के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कालों से तिर्यंच गति संबंधी इन्हीं चार गुणस्थानों संबंधी नाना और एक जीव के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कालों का कोई भेद नहीं है। वह इस प्रकार है, अभी बता रहे, देखो पहली बार प्रथम उपशम हुआ तिर्यंच में ही था, तिर्यंच से वो ना मनुष्य हुआ ना देव हुआ ना नारकी हुआ, यानी एक बार प्रथम उपशम समय तो प्राप्त किया, वो तो पंचेंद्रिय करेगा, फिर वो मिथ्यात्व में गया, यानी सासाधन होकर मिथ्यात्व में गया, अभी पंचेंद्रिय से फिर वो एकेंद्रिय में लगातार रहा इतने काल तक, मिथ्यात्व के साथ ही पंचेंद्रिय में आ गया। अर्धपुद्गल परावर्तन तो काल तो गिर गया यहाँ पर, एकेंद्रिय में रहने का काल तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, ये सम्यक तो प्राप्त किया था इसलिए इतने काल में उसने दोबारा वो पंचेंद्रिय होकर उसने सम्यक तो प्राप्त किया। उसके बाद उसको अर्लीस्ट मोक्ष भेजना है तो क्या करेंगे, उसके बाद मनुष्य होगा, मनुष्य की छोटी आयु लेके आ गया, 8 वर्ष और कुछ 9-10 वर्ष की आयु लेके आया, मनुष्य हुआ, 8 वर्ष के बाद सम्यक और संयम धारण किया, या यानी मनुष्य हुआ तो तीर्यंच तो समाप्त हुआ, बाद के कितने गिनने हैं जो मनुष्य की आयु हो, जो कुछ है छोटे में छोटी आयु कितनी लेके आएगा, 8 वर्ष और कुछ, तो वो स्वयं भी प्राप्त किया और अंतर्मुख में मोक्ष भी गया। इस तो अर्धपुद्गल परावर्तन कब से गिनना है, जब पहली बार समय हुआ तब से, तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा कि नहीं, तो कुछ कम में क्या करना पड़ेगा, अंतिम वो मनुष्य आयु पूरी कम करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी उसने सम्यक तो दोबारा सम्यक तो प्राप्त करके सासाधन में आया है, सासाधन में आने के बाद हो सकता है सासाधन में वो मनुष्य में जन्मा हो, ये भी हो सकता है, तो बाद का काल उसमें से कम करना पड़ेगा ना। अर्धपुद्गल परावर्तन वहां से गिनना है पहले समय से, तो बाद वाला सारा काल गिनना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, वो कुछ कम होता है देश होने में। देखो अभी ये बता रहे तीसरी लाइन है ना, सासाधन समय दृष्टि जीवों का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग है। अब यहाँ पर अंतर के महात्म्य को बतलाने के लिए, महात्म्य ने अंतर कितना बड़ा छोटा है वो बताने के लिए अल्प बहुत्व कहते हैं, यानी कौन सा काल छोटा है कौन सा बड़ा है। सासाधन समय दृष्टि राशि सबसे कम है, वो भी पल्ले का असंख्यात भाग है, वो सबसे कम है, नाना जीव गत उसी का काल असंख्यात गुना है, यानी अनेक जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई जीव उसमें आता रहा, तो हमने देखा जितनी राशि उससे असंख्यात गुना उसका लगातार का काल है अनेक जीवों की अपेक्षा वाला, उसी का अंतरकाल, अंतरकाल जोड़ कर लेना, वो बीच में कॉमन ही चाहिए, उसी का अंतरकाल असंख्यात गुना है, क्योंकि तीनों का कथन पल्ले का असंख्यात भाग इतना ही है। राशि भी पल्ले का असंख्यात भाग है, काल भी असंख्यात पल्ले का असंख्यात भाग है, और अंतर भी पल्ले का असंख्यात भाग है। इसमें अल्पभूतव बता रहे, राशि वाली छोटी वाली है उससे असंख्यात गुना वो काल है, उससे असंख्यात गुना अंतर है। यह अल्प बहुत्व उघादि सभी मार्गणाओं में सासाधन समय दृष्टियों का कहना चाहिए। यानी जो असंख्यात राशि वाली जो मार्गणा है वहां तो यही बात घटित हो जाएगी, तो मनुष्य संख्यात होगी तो उसमें अलग से बात होगी। बड़ा है वो भी पल्ले का असंख्यात होगा, परंतु वो बड़ा वाला है। बहुत बहुत भेद हो गए, क्योंकि पल्ले को किस संख्या से भाग देते हैं इस पर निर्भर है। जैसे हमको 1000 संख्या के भाग देने हैं, उसको 2 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं, 20 से भी दे सकते हैं, 100 से भी दे सकते हैं। सारे जो वैसे असंख्यात से ही भाग देना, असंख्यात के भी बहुत भेद है ना। आगे बढ़ते हैं। सासाधन समय दृष्टि जीवों का अंतर एक जीव की अपेक्षा, अभी हमने ये सब सोचा था, यही पढ़ रहे। जघन्य से पल्लवपम का असंख्यात भाग है, इस काल के साधक उपदेश को कहते हैं, वह इस प्रकार है। यानी ये कैसे घटित करना वो बता रहे। त्रस जीवों में रहकर जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों का उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति के सत्वरूप, स्थिति का सत्व है ना, सत्ता में उसकी स्थिति कितनी है। एक शब्द आता है स्थिति का बंध, जो नया बंध होता है उसको स्थिति बंध कहते हैं, और जो सत्ता में पड़ा है उसको स्थिति सत्व कहते हैं। ये तो बंधने वाली प्रकृतियां है नहीं है, तो इसका स्थिति का सत्व बताएं। स्थिति के सत्वरूप सागरोपम पृथक्त्व के पश्चात उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। ये वो बात बताई थी मैंने उस दिन एक इंद्र के और त्रसों की। ये सागरोपम और सागरोपम पृथक्त्व ये जो बात बताई थी, वो आगे बात पेज 33 ये वो वेदक योग्य काल जो होगा ना, उपशम योग्य काल कब हो जाएगा, उपशम के प्रायोग्य कब होता है। तो त्रसों में कहाँ तक घटाई उसने, त्रस है तो वो तो पंचेंद्रिय होकर अभी प्राप्त कर सकता है, अभी एकेंद्रिय में होगा तो उससे भी नीचे नीचे चला जाएगा। तो कहते सागरों पृथक पश्चात समुक्षम समय तो प्राप्त होता है, यदि इससे ऊपर की स्थिति रहने पर सम्यक्त को ग्रहण करता है तो निश्चय से वेदक सम्यक्त को ही प्राप्त होता है। ये लिखा है स्पष्ट, यानी तब तक क्या होगा उसका, सागरोपम पृथक्त्व के ऊपर जब स्थिति पड़ी है समय मिथ्यात् समय प्रकृति, तब वो अगर सम्यक्त्व ग्रहण करता है तो वेदक सम्यक्त्व ही होता है। और एकेंद्रियों में जाकर के जिसने सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की है, वह पल्लवपम के असंख्यातवे भाग से कम सागरोपम काल मात्र सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का स्थिति सत्व अवशेष रहने पर त्रस जीवों में उत्पन्न होकर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने इतनी इतनी घटाई है स्थिति और अभी उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होगा यहाँ आकर। इन स्थितियों से कम शेष कर्म स्थिति उद्वेलन काल, क्योंकि पल्लवपम का असंख्यात भाग है इसलिए सासाधन गुणस्थान का एक जीव संबंधी जघन्य अंतर भी पल्लवपम के असंख्यात भाग मात्र ही होता है। ये क्या कहा, इन स्थितियों से कम शेष कर्म स्थिति शेष कर्म स्थिति उद्वेलन काल, इसका अर्थ समझते हैं फिर से। नहीं देखो हमने क्या मिथ्या तो में आया है, तो मिथ्या तो प्रकृति जितनी बांधेगा उतनी उसकी स्थिति बनेगी, और ये दो प्रकृतियां जो है उनकी स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण की, अंत कोड़ाकोड़ी सागर। अब उद्वेलना करते 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 कितनी रह गई, तो कहते पल्ले का असंख्या तो भाग कम सागर कहो एक केंद्रियों में, या त्रसों में कहो तो पृथक्व सागर, इतनी रह गई। इतनी छोड़कर जो इतनी उसने घटाई ना, ये घटाने के लिए कितना काल लगा, तो पल्ले का असंख्या तो था। फिर से देखो यहां, इन स्थितियों से कम शेष कर्म स्थिति, ये सागर जितनी या पृथक्व सागर जितनी छोड़कर जो शेष कर्म स्थिति और उसका उद्वेलन काल, इतनी स्थिति का उद्वेलन करने के लिए कितना काल लगा, उसको यहां क्या कहा तीसरी लाइन में, इन स्थितियों से कम शेष कर्म स्थिति उद्वेलन काल कितना है, क्योंकि पल्योपम का असंख्यात भाग है, इसलिए सासादन गुण स्थान का एक जीव संबंधी जघन्य अंतर भी पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र ही होता है। समझ में आई ना व्यक्ति, यानी उससे कम और घटाए तो हो ही सकता है उसका, परंतु अर्लीएस्ट उसको कब हो सकता है, हमको जघन्य अंतर देखना था, तो दोबारा उपशम समय तो प्राप्त करना है, तो उसने इतनी स्थिति घटाई, अब वो त्रसों में एक इंद्रिय में घटाए तो त्रसों में आकर वो प्राप्त करेगा, उसके लिए भी पल्ले का असंख्या का भाग लगेगा, और त्रसों में उतने ही काल में उसने कितनी घटाई, पृथक्व सागर इतनी घटाई, एक इंद्रिय में जाके ज्यादा घटाई, उतने ही काल में अधिक स्थिति घटी, क्योंकि एक इंद्रियों में ऐसे भी स्थिति कांडक घात होते रहते हैं बिना किसी, क्योंकि अन्यथा त्रसों में ऐसे स्थिति कांडक घात नहीं होते, केवल उद्वेलना कांडक हो रहे हैं। त्रसों की पंचेंद्रियों में से एक इंद्रियों में जाने वाले की सभी कर्मों की स्थिति घटती चली जाती है, लंबे काल में सभी कर्मों की स्थिति घट जाती है। यानी वहां मिथ्या तो हो, ज्ञानावरण हो, जो कुछ है वो सारे कर्मों की स्थिति घट जाती है, लंबे काल जो एक इंद्रिय में रहा है उसकी स्थिति सागर से भी कम हो जाती है। इसलिए पल्ले का असंख्यात भाग कम एक सागर बताया, क्योंकि उसने मिथ्या तो की भी उतनी हो जाएगी, उसके अन्य की भी उतनी हो जाएगी। ये बात हमारे लिए भी नहीं थी ना, एक इंद्रिय में कर्मों के स्थिति कांडक घात होते रहते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय है तो कितना स्थिति सत्व लेके गया, स्थिति सत्व जो कोई सत्तर कोड़ा कोड़ी बांध कर गया है, एक देव भी जाता है ना एक इंद्रियों में, नेक्स्ट समय में चला गया, तो इतनी सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्या तो है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर का ज्ञानावरण है, वो सब उत्कृष्ट स्थिति लेके गया, अब वहां उसके कांड घात स्थिति कांड घात होते हैं, अनुभाग कांड घात भी होते रहते हैं, एक इंद्रियों के योग्य उसकी स्थिति बनाई जाती है, उसके लिए भी पल्ले का असंख्या तो भाग लगता है, तो उसने इतनी घटाई, कितनी सागर से भी पल्ले का असंख्या तो भाग कम, ये उसकी मिथ्या तो कर्म की यानी दर्शन मुनि की उसकी मैं इतनी स्थिति रहती हूँ वहां पर। आयु तो लगातार एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में जा रहा है ना, आयु कहाँ ज्यादा है, आयु अंतर्मूर्त भी हो सकती है, आयु 22,000 की भी हो सकती है वर्षों की, आयु से कुछ मतलब नहीं, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में ही जाता रहता है,
और वो भी कितना बांधता है,
वो तो सागर से ज्यादा नहीं बांधेगा, मैक्सिमम सागर और मिनिमम सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम मिथ्यात्व का। आगे बढ़े अभी 34 पेज पर नया पैराग्राफ, ये जघन्य अंतर हमने देखा, सासादन गुण स्थान का एक जीव संबंधी उत्कृष्ट अंतर देशों ने कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, पर यहां जो विशेष बात है उसे कहते हैं, विशेष बात क्या है बता रहे, क्योंकि उसको तीर्यंश का तीर्यंश में ही रखना है, पहली बार प्रथम उपशम किया तभी तीर्यंश ही रखा था, देखो अनादि मिथ्या दृष्टि एक तीर्यंश, आप कहेंगे वो सम्यक मनुष्यों में सम्यक तो प्राप्त करा के बाद में तिरंज बनाओ, तो नहीं, क्योंकि तिरंज के मार्गना है, तिरंज में रहते हुए उसने साधन किया है, साधन का अंतर लेना है। अनादि मिथ्या दृष्टि एक तिरंज, तीनों करणों को करके सम्यक को प्राप्त होने के प्रथम समय में अनंत संसार को छेद कर, क्योंकि वहां से अर्धपदगल चालू किया। आप कहेंगे मनुष्य में बिता कर फिर यहाँ लाओ, तो फिर अर्धपुद्गल वहां से चालू हो जाता मनुष्य में। ऐसा भी हो सकता है ना कि मनुष्य में प्रथमोक्षम प्राप्त किया, मनुष्य में सासागन में आए और तिरंज में गए, यह हो सकता था, और वहां से हम अंतर गिन सकते थे। अर्धपुद्गल कहाँ से गिनना पड़ता है, मनुष्य में जब समय को प्राप्त किया तब से, तो वो नहीं चलेगा, हमें तिरंज में ही उसको कराना है। तो सम्यक्त को प्राप्त होने के प्रथम समय में अनंत संसार को छेद कर और अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण करके, किसको, संसार को, अभी उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ और साधन गुणस्थान को गया, यानी उसमें जो यथायोग्य काल में वो साधन में गया। पुनः मिथ्यात्व को जाकर, साधन में रहो एक समय या छह अवली, मिथ्यात्व में जाने का समय वही है सबका, मिथ्यात्व में गया और अंतर को प्राप्त होकर, यानी यहाँ से उसका अंतर शुरू हुआ, जब से अर्धपुद्गल किया तो एक अंतर मूर्त तो सम्यक तो में बिताया, बाद में वो सासाधन होकर मिथ्या तो नहीं गया। अर्धपुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण करके द्विचरम भव में, द्विचरम क्यों, क्योंकि उसको तिरंजों में ही रखना है और मोक्ष तो उसको मनुष्य में होगा, चरम शरीर ही तो मनुष्य में होगा, अभी ये तिरंज का लास्ट भव है, पर ऐसे भवों में वो द्विचरम है, समझ में आई बात, मनुष्य का भव करना है तभी तो मुक्त जाएगा, इसलिए उसका द्विचरम भव है, पर वो संगी पंचेंद्रिय तिरंज का होगा, उसका द्विचरम भव में पंचेंद्रिय तिरंजों में उत्पन्न होकर और मनुष्यों में आयु को बांधकर, मनुष्य आयु बांधी उसने, और बाद में, क्योंकि आयु बंध बाद में नहीं कराना है उसको, तीनों करणों को करके उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। पुनः उपशम सम्यक्त के काल में मनुष्य गति के योग्य आवली के असंख्यात वे भाग मात्र काल के अवशेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। अभी इसको जरा समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहते हैं, आवली का संख्या तो वह क्यों कहा, अभी तो बांधने की सवाल ही नहीं है, आयु तो बांध चुका था वो पहले ही, कोई बात नहीं, इस पर ही समझाते हैं। सासाधन में कोई जीव आता है उपशम सम्यक्त के से गिर कर, शुरुआत में मरेगा तो देव में जाएगा, यानी उसकी विशुद्धि ज्यादा है, दूसरे काल में मरेगा तो देव या मनुष्य में जाएगा, तीसरे भाग में मरता है तो तिरंज में जाता है, साधन वाला नरक में तो जाता नहीं है, ये तीसरा नहीं, वो इसलिए कहते मनुष्य गति के योग्य उस काल में मरा, यानी एक समय में मरने वाला तो मनुष्य में नहीं जाएगा, तो आवली का असंख्यात भाग काल के बाद मरा। अर्लीस्ट कब मर सकता है, आवली का असंख्या तो भाग बीत गया, अब ये मनुष्य गति में मरकर जा सकता है, समझ में आई ना, ये क्यों डाली कंडीशन, फिर से देखो, उपशम सम्यक्त के काल में मनुष्य गति के योग्य आयु आवली के असंख्यात भाग मात्र काल के अवशेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, यानी सासाधन का काल उसका आवली का असंख्यात भाग, इस प्रकार से उक्त अंतर लब्ध हो गया, साधन में जाता है तो अंतर समाप्त हुआ, तो इतना अंतर उसने, उसके बाद क्या क्या जाएगा, तो तिरंज गति का आवली का असंख्यात भाग साधन का, और फिर मनुष्य के जो मनुष्य में आने पर कम से कम आयु बांधकर आया है उतने काल में वो मोक्ष जाएगा, देखो उसके बाद बताएंगे। इस प्रकार से उक्त अंतर लब्ध हो गया, आवली के असंख्यात वे भाग मात्र काल सासादन गुणस्थान में रहकर मरा और मनुष्य हो गया। ये अवली के हुए ना, आवली के। आवली यानी देव में जाने वाला उससे पहले मरेगा। क्योंकि विशुद्धि ज्यादा है ना अभी वहां पर। बराबर। तभी तो बीज चरम का है ना, चरम शरीर मनुष्य ही होता है। अरे उत्तर तो उसके अर्धपुद्गल बढ़ेगा ना बाद में। बाद में कम कम से कम काल रखना है, अर्धपुद्गल में उसको मोक्ष होना है। अभी उसके तीरियंचों में से इसीलिए मनुष्य भी छोटी में छोटी बांधेगा वो, क्योंकि तीरियंच में से निकलने के बाद उसको कम से कम काल अभी संसार में रखना है। तीरियंच गति रखेंगे वही तो, इसलिए उसको एकदम लास्ट में लास्ट उसको सासादन में भेजिए उसके भोग के अंत में। हाँ तो देखो अभी मनुष्य की बात करें, मनुष्य में कम से कम काल बिताने वाला जीव लिया मरकर मनुष्य हो गया। यहाँ पर 7 मास गर्भ में रहकर निकला और 7 वर्ष और अंतर्मुहूर्त से अधिक 5 मास बिताकर, क्योंकि ये 7 मास गर्भ के और 5 मास बाहर के मिलकर 1 साल हो गया, यानी गर्भ में आने से उन्होंने 8 साल गिने, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। पुनः अनंतानुबंधी कषाय का विसर्जन करके दर्शन मुनि का क्षय कर अप्रमत्त प्रमत्त पुनः अप्रमत्त हो पुनः अपूर्व करणादि 6 मंत्रमूर्तों से निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 14 अंतर्मूर्तों से तथा आवली के असंख्यात भाग से अधिक, वो आवली का असंख्यात भाग उसने तीरेंच में बिताया था सासादन में, 8 वर्षों से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। यानी वो आयु भी कितनी बांधी थी, 8 वर्ष और ये 14 अंतर्मूर्त इतनी आयु बांध कर आया, क्योंकि उसको बाद में अंत, ये हमने अर्ध पुद्गल में से जो माइनस करने का काल है, जो माइनस करना है वो कम से कम रखना था, इसलिए ऐसे ही हमने बातें यानी गर्भ के। हाँ क्योंकि गर्भ से, गर्भ में आने से लेकर 8 वर्ष गिनने, इसलिए गर्भ में 7 महीने और बाहर उसके वो 5 महीने और कुछ अंतर्मुक्त होते, सब मिलकर 8 वर्ष होते, तो उसके सम्यक्त्व और सम्यक्त्व धारण किया, गर्भकाल छोटा किया, क्योंकि उसके बाहर जल्दी उसको सम्यक्त्व हो जाएगी। थी ये 14 अंतर्मूर्त की नहीं यहाँ पर पेज नंबर 35 पर है। देखो ये कैसे गिनना उसकी बात है ना। देव होता, देव में मरने, देव में जाने वाला ही इतनी जल्दी मरेगा, यानी वहां मरने वाला देव होता है ना, क्योंकि आयु तो पहले बांधी उसने, जिसने देवायु बांधी है वो कभी भी मर सकता है। ऐसा नहीं कि देवायु बांधी है तो पहले मरेगा, ऐसा नहीं, परंतु पहले काल में तो ऐसे कृत्य वेदक में भी बताते हैं ना, शुरुआत के काल में विशुद्धि ज्यादा है वहां देव में जाता है, फिर कृत्य वेदक तो चारों गति में जन्म ले सकता है। कैसे बढ़ती जाएगी, अनिवृत्तिकरण समाप्त होने के बाद कृत्य वेदक हो जाता है। जा रहा है परंतु उसके तीन कर्ण समाप्त हुए, तीन कर्ण समाप्त हुए तब कृतकृत्य वेदक हुआ। विशुद्धि कुछ काल तक रहती है परंतु अभी कम होने वाली है, बढ़ेगी कैसे? तो क्षायिक हो रहा है तो क्षायिक के लिए जो कर्म किए तभी विशुद्धि बढ़ी थी उसको, अभी उतनी विशुद्धि थोड़े काल तक रहती है उसकी, यानी उसी विशुद्धि से वो बाकी कार्य तो हो जाता है उसका जो वहां पर सम्यक प्रकृति खिरने का कार्य हो रहा है, परंतु वो सब सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की जितनी स्थिति कांड के सब पहले ही हो चुके उसके, करण काल में हो गए, करण काल पूर्ण हुआ बाद में उसको कृतकृत्य वेदक है, क्योंकि करण परिणाम में मरण नहीं है, कृतकृत्य वेदक के काल में मरण है। वहां पर भी शुरुआत में देव में हो जाएगा, फिर देव या मनुष्य, फिर देव मनुष्य तिर्यंच, फिर देव मनुष्य नारकीय तिर्यंच, उसमें भी चार भाग होते हैं। यहाँ तो सासाधन वाला तो नरक में जाएगा नहीं, तो शुरुआत में अभी प्रथमोपशम होकर वो आया है तो अभी शुरुआत में तो विशुद्धि ज्यादा होगी, इस तरह सोचते हैं। इसलिए आवली का असंख्यात भाग मनुष्य में जाने योग्य काल क्यों कहा, ये इसका कारण ये है। कहाँ पर? हाँ, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में विशुद्धि ज्यादा होगी। हाँ, आगे लिखा है? मैंने वो मेरे बुद्धि से बताया अभी मुझे। हाँ, आगे पढ़ते देखो। अब यहाँ पर उपयुक्त ऐसा कहते हैं, पेज नंबर 35, वह इस प्रकार है। सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने के द्वितीय समय में यदि वह जीव मरता है तो नियम से देवगति में उत्पन्न होता है। बात आई ना यहाँ पर? यानी पहला आवली का संख्या तो भाग देवगति में उत्पन्न होने का, होने की योग्यता का काल है। इस प्रकार आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल देवगति में उत्पन्न होने के योग्य होता है। उसके ऊपर मनुष्य गति के योग्य काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार से आगे संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, चतुरेंद्रिय, तीन्द्रिय, द्विन्द्रिय और एकेंद्रिय में उत्पन्न होने योग्य होता है। यह नियम सर्वत्र सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने वालों का जानना चाहिए। अभी देवों में ऐसा लेंगे, शुरुआत में मरने वाला मनुष्य होगा और बाद में मरने वाला पंचेंद्रिय, वो तो पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है या एकेंद्रिय में जाएगा लास्ट में मरने वाला। देवों में भी ऐसा लेंगे, शुरुआत में मनुष्य में जाएगा या फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में जाएगा, फिर या लास्ट में एकेंद्रिय में जा सकता है। हमने बहुत बार देखा ना, एक इंद्रियों में मारणांतिक करता है देवों से, देव करते हैं, तो बहुत बार आया था। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण अंतर है। ये तो हमने नाना जीवन की अपेक्षा देखा था। यहाँ पर द्रव्य काल और अंतर संबंधी अल्पभूतव सासाधन गुणस्थान के समान है। द्रव्य काल और अंतर का अर्थ क्या होता है?
संख्या।
अभी हमने देखा ना के सम्यक मिथ्या दृष्टि टोटल जीव कितने पल्ले की असंख्या देगा, वो संख्या कम है, उसमें लगातार नाना जीव रहने का काल उससे असंख्यात गुणा, क्योंकि उसको अंतर्मूल से गुणा करो, इतने समय से गुणा करो तो असंख्यात गुणा, और अंतर उससे भी असंख्यात गुणा, ये उसका अर्थ होता है। अभी हमने 33 पेज पर देखा था द्रव्य ने उसकी संख्या, वो भी तीनों। हाँ, अंतर भी उतने। अभी शासन के लिए अभी हमने देखा वैसे यहाँ पर होता है, अभी 33 पेज पर देखा था हमने। इसी गुण स्थान का अंतर एक जीव की अपेक्षा, देखो एक जीव की अपेक्षा तीसरे से पहले में आया वापस तीसरे में गया, ये हो सकता है। जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से देशों न अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल है। अभी देशों न कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन, वो कैसे गिनेंगे? पहली बार प्रथमोक्षम किया, प्रथमोक्षम का काल पूर्ण हो गया, पूर्ण होने के बाद वो डायरेक्ट तीसरे में आया और तीसरे से फिर वो पहले में चला गया हम कहेंगे, तो उसका अंतर चालू हो गया। इस तरह से गिनना। अभी हम वैदिक समय तो होने की जरूरत नहीं है, प्रथम ऑप्शन में से तीसरे में जा सकता है और तीसरे में होकर पहले में गया। यहाँ क्या लिखते देखेंगे, केवल यहाँ जो विशेषता है उसे कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि एक तिर्यंच तीनों कर्णों को करके सम्यक्त्व के प्राप्त होने के प्रथम समय में अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र संसार की स्थिति को करके प्रथमोक्षम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त प्रथमोक्षम में रहा और सम्यक मिथ्यात्व को गया, डायरेक्ट आया ना वो प्रथमोक्षम का काल पूरा होने पर तीसरे में आया, वहाँ एक अंतर्मूर्त रहा, उसके पश्चात अंतर चालू हो गया, फिर मिथ्यात्व को जाकर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण परिभ्रमण करके द्विचरम भव में, ऐसा यहाँ पर भी वैसे लेना है क्योंकि बाद में उसको मोक्ष कराना है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होकर मनुष्य आयु को बांधकर अंत में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होकर सम्यक मिथ्यात्व को गया, क्योंकि उसको सम्यक मिथ्यात्व का अंतर है ना, इसलिए उसको प्रथम उपशम करके फिर सम्यक मिथ्यात्व में गया। समय मिथ्या तो मरण नहीं होगा, तो उसका एक अंतर्मूर्त बीत गया, फिर बाद में मरेगा वो। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पुनः मिथ्या तो को गया और वहां पर भी अंतर्मूर्त उसका मिथ्या तो में लिया, समय मिथ्या तो में से, और मरकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात का कथन सांसाधन समय दृष्टि के समान ही है, यानी इसने भी वो 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूर्तों की आयु बांधकर मनुष्य में आया है। यह 17 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्षों से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है, क्योंकि उसको उपशम समय तो प्राप्त किया, फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया, फिर उसको मिथ्यात्व में लाया और फिर मर गया। वहां तो डायरेक्ट सासाधन में से मारकर उसको ले गए थे, केवल आवली का असंख्यात भाग कम कर दिया था उसका है तीरंच में से। अब असंयत समय दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। तीरंचों में हमेशा ही समय दृष्टि जीव होगे, चौथे में होगे, पांचवे में होगे। एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से, वो ध हुआ है, जघन्य से अंतर्मूर्त, यानी चौथे वाला पहले में आया वापस चौथे में चला गया, जघन्य से अंतर्मूर्त, और उत्कर्ष से देशों न अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतरकाल है। जो अभी हमने सासाधन के लिए तीसरे के लिए देखे, तो शुरुआत में एक बार प्राप्त किया, लास्ट में एक बार प्राप्त किया, अभी उसने सम्यक तो प्राप्त करके उसको मिथ्यात्व में चले जाओ, सम्यक तो का अंतर चालू हो गया। देखो केवल जो विशेषता है वही कही जाती है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों ही कर्णों को करके प्रथमोक्षम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। अभी उसको जल्दी में जल्दी अंतर कराना है तो 6 अवली पहले ही संसाधन में भेज देते हैं। उपशम सम्यक्त्व के काल में 6 अवलिया अवशेष रह जाने पर संसाधन गुणस्थान को जाकर अंतर को प्राप्त हो गया, वो पाप तो हुआ है, प्राप्त हो गया। पश्चात अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल परिभ्रमण करके द्विचरम भव में पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, पुनः मनुष्यों में वर्ष पृथक्त्व की आयु को बांधकर, मनुष्यों में ने मनुष्य आयु बांधकर, मनुष्यों में बांधकर ने उस तिर्यंच ने मनुष्य आयु बांधकर, कितनी वर्ष बांधी आयु? वर्ष पृथक्त्व, वर्ष पृथक्त्व ने कुछ वर्ष, यानी अभी 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूर्त, उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। तो उत्सम समय तो वो प्राप्त होते उसका चौथे का अंतर समाप्त हुआ। पीछे आवली के असंख्यात वे भाग मात्र काल के अथवा यहाँ से लगाकर एक समय कम छह आवली काल प्रमाण तक उपशम समय के काल में अवशेष रह जाने पर सासादन गुण स्थान को जाकर मनुष्य गति के योग्य काल में मरा और मनुष्य हुआ। क्या कहते हैं वो छावली पहले जाता है या कहीं पर भी जाता है, मरेगा कब? सासादन में जाने के बाद एक आवली प्रमाण का आवली का असंख्यात विभाग काल में वो मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है, और वहां तो अपर्याप्त काल में वो मिथ्यात्व में आएगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, तिव्यं जगति उसकी छूटी वहां पर। सासादन को प्राप्त होकर मनुष्य गति के योग्य काल में मरा और मनुष्य हुआ, इसके ऊपर सासादन के समान कथन जानना चाहिए। इस प्रकार 15 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्ष से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। तिर्यंचों की बात चल रही है यहाँ पर, पांचवें गुणस्थान की बात करें तिर्यंचों में संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी हमेशा ही तिर्यंचों में पांचवें गुणस्थान में असंख्यात जीव पाए जाएंगे। वहां एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुख, यानी पांचवें वाला अन्य गुणस्थान में जाकर फिर पांचवें में आ गया, चौथे में जाकर आया, पहले में जाकर आया, हो सकता है। जघन्य से अंतर्मूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अंतर है। देखो इसका अर्थ है सबसे अनादि मिथ्या दृष्टि को भी सबसे पहली बार हुआ है तो तिर्यंच में हुआ है, तो वहाँ सारे उसके देशा वगैरह सब कंडीशंस फुलफिल होगी। हमें आते हैं ना, हो सकता है समोचरण में जाएगा, हो सकता है किसी जैसे सिंह की पर्याय में मिला उनको, ऐसा किसी का उद्देश्य मिला होगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अनादि, देखो यह विशेषता बता रहे, जो विशेषता है उसे कहते हैं एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अर्ध पुद्गल परिवर्तन के आदि समय में उपशम सम्यक्त्व को और संयमा संयम को युगपत प्राप्त हुआ, यानी डायरेक्ट उसने पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया औपशमिक सम्यक्त्व के साथ। उपशम सम्यक्त्व के काल में छह आवलियां अवशेष रह जाने पर सासादन को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, पांचवें में से दूसरे में गया, अंतर शुरू हो गया, सम्यक्त्व का अंतर चालू हो गया पांचवें का, और मिथ्यात्व में गया। पश्चात अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल परिभ्रमण करके, क्योंकि मिथ्यात्व में जाकर ही आयु बांधी, क्योंकि तिर्यंच में भ्रमण करना है उसको, द्विचरम भव में पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होकर उपशम सम्यक्त्व को और संयमा संयम को युगपत प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को गया, अन्यत्र क्या किया था, पहले आयु को बांधा था ना, देखो देखो चौथे वाले के लिए क्या कंडीशन भेजी थी, निकालो चौथे का अंतर जब कहा, पहले आयु को बांधकर फिर उपशम समय में गया था, तो यहाँ ऐसा क्यों कहा, मेरा प्रश्न है ये बताने के लिए है। चौथे में जाने के लिए पहले मनुष्य आयु बांधा था, बाद में उपशम समय को प्राप्त किया, बाद में उसको जल्दी से जल्दी भेज दिया, तो यहाँ क्यों नहीं पहले बांधी आयु, बाद में क्यों बांधी, यहाँ क्या लिखा अभी हमने, देखो देखो पहले उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ अंतर तो क्या पश्चात मिथ्या तो गया और आयु बांधा ऐसा नहीं। पहले मिथ्या तो में ही आयु बांधना था ना, उसने पहले भी मिथ्या तो में ही बांधी थी ना। देखो जिसने आयु पहले मिथ्या मनुष्य आयु बांधी है उसका पांचवा गुणसार नहीं हो सकता, एक उसको पांचवे में लाना था। जिसने पहले मनुष्य आयु बांधी है तिरंच आयु नरकायु जो कोई बांधता है तो वो पांचवा गुणसार नहीं बांधता, इसे अबधायु वाला रखा। अबधायु को हो सकता है मनुष्य में जो है अबधायु है तो श्रेणी तक चढ़ सकता है उतर सकता है, पर मनुष्य ने अगर मनुष्यायु बांधी तिरंचायु बांधी नरकायु बांधी तो उसको चौथे से ऊपर गमन ही नहीं होता, ये नियम है। बिना आयु बांधे ग्यारहवें गुणस्थान तक भी जा सकता है, फिर नीचे लौट आकर मिथ्या तो में फिर भी आयु बांध सकता है उसके, इसलिए यहाँ पहले आयु नहीं बांधी बाद में। देखो एक एक कंडीशन जो डाली है ना सोच समझ कर कितनी डाली होगी, कितना क्या लिखा है यहाँ पर, बंजनी तिरंचो में उत्पन्न होकर उपशम सम्यक और संयमा संयम के युगपत प्राप्त हुआ, तो अंत तो उसको हमने काउंट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उपशम सम्यक में रहा वो फिर मिथ्या तो में गया, बाद में आयु बांधी, आयु बांधते ही ताबड़तोप मरण नहीं हो सकता, फिर विश्राम ले आए नहीं अंतर्मुक्त रुक जाता है फिर, और फिर मरकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ। किसी भी ऊपर के गुणस्थान से मिथ्या तो में आते ही मरण नहीं हो सकता, अंतर्मुक्त के बाद ही हो सकता है। इसके ऊपर सासाधन का ही क्रम है, इसके ऊपर है उसके पश्चात मनुष्य में क्या क्या हुआ सात महीने वगैरह वगैरह वो कंडीशन सब लगा ली। इस प्रकार 18 अंतर्मुक्त से अधिक 8 वर्षों से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है, तिरंचों में रहते हुए की बात है। गुणस्थानों में अगर अंतर घटित करना है तो मनुष्यों में घटित कर सकते हैं ना, अंतिम भव मनुष्यों में घटित करेंगे, बाद में वो सातवें में गए और मोक्ष गए ऐसा कहेंगे। शंका, तिरंचों में संयमा संयम ग्रहण करने से पूर्व ही उस मिथ्या दृष्टि जीव को मनुष्यायु का बंध क्यों नहीं कराया, प्रश्न पूछा ना, यही ऊपर लिखा था परंतु उसमें क्लियर नहीं होगा, पहले बांधे के नहीं बाद में उससे क्या फर्क पड़ता है, लिखा होगा ऐसा लगता है हमको। समाधान, नहीं, क्योंकि मनुष्यायु को बांध लेने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के संयमा संयम का ग्रहण नहीं होता। तो हम तो श्रेणी की कथा मालूम है, श्रेणी कभी कहाँ है, नरक में है। श्रेणिक राजा जब था वो जीव तो उसको तो समाचार में तो श्रावकोत्तम कहत कहे गए ग्रंथ में आता है ना, तो उसका गुणस्थान कौन सा था, चौथा कि पांचवा, हाँ क्यों, नरकायु बांधी थी ऑलरेडी, बाद में समय को ग्रहण किया तो चौथे के ऊपर नहीं जा सकता, भले एक शायिक हो सकता है पर पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता। शायिक हुआ ना, शायिक हुआ तीर्थंकर गोत्र बांधा फिर भी पांचवा गुणस्थान नहीं हुआ, होता है ना अर्लीस्ट चौथे में होता है, चौथे से सातवें तक कहीं पर भी प्राप्त कर सकता है। अब आगे ये तिरंच इन जनरल बात हुई, अब कंडीशन क्या है, पंचेंद्रिय तिरंचों में, पंचेंद्रिय तिरंचों में रहना है अभी उसको, और पंचेंद्रिय तिरंच से पंचेंद्रिय तिरंच में ही उत्पन्न कराना है, वो संगी हो या असंगी हो, उससे हमें ज्यादा यानी वो अर्ध पुद्गल वगैरह वो तो घटित ही नहीं होगा, क्योंकि लगातार पंचेंद्रिय तिरंचों में रहने का काल कितना है, लगातार पंचेंद्रिय 2000 सागर कहाँ से होगा, त्रस की बात नहीं है, तिरंच में रहना चाहिए, त्रस में भले रहेगा तो देव मनुष्य नारकी होता रहेगा या तिरंच होता रहेगा, पंचेंद्रिय में रहने का काल वो अलग है। अकेले पंचेंद्रिय जो है, पंचेंद्रिय कहने से चारों गति के पंचेंद्रिय आ गए उसमें 1000, हाँ पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 3 पल्ले, हाँ यानी चीजों को कैसे गिनना है। तो जैसे संगी के, जैसे स्त्री के पुरुष के नपुंसक के 8-8 हो, 24 तो हो गए संगी के, असंगी के भी 8-8 यानी 24 उसके हुए, 48 तो ये हो गए। फिर बीच में अपर्याप्त का एक भोग किया और फिर उसके ऐसे इतने भोग हो गए, यानी 48 96 हो सकते। अभी 96 वा जो भाव है उसको वो भोग भूमि का भाव करना, यानी 95 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ल, इतना तो अभी इसको हम कहेंगे उसकी काय स्थिति कहेंगे उसकी, इतने लगातार वो उसका पर्याय में रह सकता है ना। अभी अभी हम पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। एक जीव की अपेक्षा जब बात करनी है तो इसको हमको सोचना पड़ेगा। नाना जीव में तो कहेंगे हमेशा होते हैं, भूभूमि का वो भी, हाँ तीन पल्ले वो भूभूमि का है, वो चौथे गुणस्थान के लिए लागू होगा, पांचवे के लिए उसको भी नहीं ले सकते। पांचवे के लिए केवल वो 96 पूर्व कोटि लेनी पड़ेगी, ख्याल में आई बात। अब ये देखते हैं ऊपर पढ़ेंगे, पंचेंद्रिय तिरिक्ख, पंचेंद्रिय तिरिक्ख पज्जत, पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनी निसु, वो जोनी निसु शब्द इकट्ठा है, बीच में डैश नहीं चाहिए, जोनिनी यानी योनिनी ऐसा शब्द है वो, यानी स्त्री वेदी जो सीरियंस है। मिच्छा दिखिनम अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। पंचेंद्रिय तिरियंच, ये पंचेंद्रियों के भेद होते हैं तिरियंच गति मार्गणा में, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमतियों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमूर्तम, यानी कोई भी ये तो जीव समय को प्राप्त कर सकते हैं, तो अंतर्मूर्त में समय को ही रहकर बाद में नीचे आ गए तो हो गया उसका अंतर। तो कहते एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमूर्तम, उक्त जीवों में एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि तीनों ही प्रकार के पंचेंद्रिय तिरियंचों के तीन मिथ्या दृष्टि दृष्ट मार्गी, यानी बहुत बार जिन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया है ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि है ये दृष्ट मार्गी, मार्ग जिसने देख लिया जीवों को असंयत सम्यक तो गुणस्थान में ले जाकर सर्व जगन्य काल से पुनः मिथ्यात्व के ग्रहण कराने पर अंतर्मूर्त काल प्रमाण अंतर पाया जाता है। ये बहुत बार जिसका सम्यक तो मिथ्या तो होता है वेदक समय दृष्टि है तो उसके छोटे काल में वो आ सकता है, उपशम समय का काल बड़ा होगा इसलिए उसकी बात नहीं ली यहाँ पर। उपकसेन तिन्नी पल्लिदवा में देसुनाने, अभी ये जो मैंने बताई लगातार की कंडीशन वो चौथे गुणस्थान का अंतर में काम आएगी, पहले गुणस्थान के अंतर में उसको लगातार सम्यक्त्व में रखना है, तो लगातार सम्यक्त्व में इतने वो तिरंच में से तिरंच में नहीं जाएगा, समझ में। ये जो हमने उत्कृष्ट काल गिना था ना 95, वो मिथ्यात्व में रहने का काल गिनेंगे, यानी सम्यक्त्व का अंतर में वो काम आएगा। मिथ्यात्व के अंतर में क्या करना है उसको समय दृष्टि रखना है, नहीं समझ, मिथ्यात्व में से सम्यक तो में ले जाना और बाद में फिर मिथ्यात्व में लाना है, उसका एक ही भाव ले सकते हैं, एक ही भाव ले सकते हैं तो तीन पल्ले वाला लेंगे। उपकसेन तीनी पल्लिदो में देसुनाने, वही कहते उक्त तीनों ही प्रकार के मिथ्या दृष्टि तिरियंचों का अंतर कुछ कम तीन पल्लोपम प्रमाण है, जैसे मोहकर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाले तीन तिरियंच, ने तीन प्रकार के तिरियंच चाहिए, ये जो हमने अभी देखे ना पंचेंद्रिय तिरियंच, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त योनिमति, अथवा मनुष्य तीन पल्लोपम की आयु स्थिति वाले पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुए, क्या कहना चाहते हैं, इन्हें वही दो महीने होता है, वो जाने वाला कौन है, मरकर जाने वाला, यानी भोगभूमि में कौन उत्पन्न होते हैं, मनुष्य तिरंच होते हैं, वो पंचेंद्रिय तिरंच या मनुष्य भूमि में उत्पन्न हो गए। इसलिए कौन लिए यहाँ पर? ये सादी मिथ्या दृष्टि मनुष्य तीर्यंश भोग भूमि में उत्पन्न हुए। सादी मिथ्या दृष्टि इसलिए लिया कि उनको तो वेदक समय तो प्राप्त कराना है, वो अर्लीस्ट प्राप्त कराना है। इसलिए ये कौन मरा है? तो मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाले तीन प्रकार के तीर्यंश अथवा मनुष्य ये मरकर कहाँ उत्पन्न हुए? तीन पल्लोपम की आयु स्थिति वाले पंचेंद्रिय तीर्यंश त्रिक अपने अपने उसमें समझना कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुए। वह 2 मास गर्भ में रहकर निकले, ये उनका गर्भकाल 2 मास है इसलिए उसको ले लिया। और मुहूर्त पृथक्त्व से विशुद्ध होकर वेदक समय को प्राप्त हुए। कुछ मुहूर्तों में ये अंतर्मुहूर्त नहीं लेते, वो जो जिसको हम कहेंगे ना तो समूर्छनों में जो लेते वो यहाँ नहीं होता। मुहूर्त पृथक्त्व कुछ मुहूर्त और आयु के अंत में आगामी आयु को बांधकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। क्योंकि सम्यक्त्व में लंबे काल तक रखना है ना, इसलिए इस प्रकार से अंतर प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त कर और मरण करके सौधर्म ईशान देवों में उत्पन्न हुए। मिथ्यात्व में अभी नहीं मरेंगे क्योंकि सौधर्म ईशान की आयु बांधी है समय दृष्टि में, तो वहीं फिर समय को में जाके मरण होगा उनका। इस प्रकार इन 2 अंतर्मुहूर्तों से और मुहूर्त पृथक्तों से अधिक 2 मासों से कम 3 पल्लोपम काल तीनों जाति वाले तीर्यंश, ये तीनों जाति वाले नहीं हो पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त वगैरह मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये बात आसान है समझने में। मिथ्यात्व का अंतर है उसको सम्यक्त्व में रखना है, तो सम्यक्त्व के साथ तीर्यंश से तीर्यंश में उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए एक ही भव तीर्यंश का लिया, वो 3 पल्ले वाला लिया। शासन सम्मादिच्छि सम्मा मिच्छा दिच्छिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। उक्त तीनों प्रकार के तीर्यंश संसाधन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से 1 समय होता है। जो अभी हमने सामान्य तीर्यंशों में कहा वह इनमें भी कहा, क्योंकि साधन तो पंचेंद्रियों के ही होगा है ना। जैसे पंचेंद्रिय तीर्यंश अतिरिक्त साधन समय दृष्टि जीवों का प्रवाह ने लगातार कोई ना कोई उसमें आते रहेंगे, कितने ही काल तक निरंतर आया। पुनः सभी सासाधन जीवों के मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाने पर एक समय के लिए सासाधन गुणस्थान का विरह होकर, यानी कोई भी जीव सासाधन में नहीं था ऐसा हो सकता है। द्वितीय समय में उपशम समय दृष्टि जीवों के सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने पर एक समय प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तीनों जाति वाले तीर्यंश समय मिथ्या दृष्टि जीवों का भी अंतर कहना चाहिए। ये जघन्य अंतर 1 समय बताया, अभी उत्कृष्ट बताएंगे। उपकसेन पलिदो वमस्व असंख्य यदि भागो। उक्त तीनों प्रकार के तीर्यंश सासाधन और समय मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। जो सामान्य तीर्यंशों में है वही बात इसमें लागू होगी। जैसे तीनों ही जाति वाले पंचेंद्रिय तीर्यंश सासाधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि सभी जीवों के अन्य गुणस्थान को चले जाने पर, यानी इस गुणस्थान में कुछ थे जीव, नाना जीव थे, वो अन्य गुणस्थान को प्राप्त हुए। इन दोनों गुणस्थानों का पंचेंद्रिय तीर्यंश त्रिक में उत्कर्ष से पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र अंतर होकर पुनः दोनों गुणस्थानों के संभव हो जाने पर, यानी इतने अंतर के पश्चात नियम से कोई ना कोई जीव उस गुणस्थान में आएगा ही आएगा, ये नक्की है। मैक्सिमम अंतर का अर्थ क्या होता है? अभी कोई सागर तक कोई जीव नहीं होगा, ऐसे तो कभी नहीं होगा। पल्ले का असंख्या तो पल्ले तक भी नहीं, इतने काल में कोई ना कोई साधन में आएगा ही आएगा, तीसरे में भी आएगा ही आएगा। तो इतना अंतर देकर पुनः दोनों गुणस्थानों के संभव हो जाने पर उक्त अंतर प्राप्त हो जाता है। अब एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न पलिदों में से असंख्य यदि भागो अंतोमोत्तम। सासागन के लिए पल्ले का असंख्या तो भाग, क्योंकि वो उपशम योग्य काल तभी तक नहीं आता है ना। सासागन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम के असंख्यात विभाग और अंतर्मूर्त है। पंचेंद्रिय तिरियंच अतिरिक्त सासाधन समय दृष्टियों का पल्योपम के असंख्यात विभाग और समय मिथ्या दृष्टियों का अंतर्मूर्त प्रमाण एक जीव का जघन्य अंतर होता है, शेष सुगम है। यानी तीसरे से अन्य गुण स्थान को प्राप्त हुआ, फिर वापस तीसरे में आया, वो जघन्य अंतर हो। उपकसेन तिन्नी पलिदोगमानी पौव कोड़ी पुदत्तेन अभ्रियाणी। उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकार के तिर्यंचों का अंतर ये उत्कृष्ट अंतर चाहिए। उत्कृष्ट शब्द डालना। तिर्यंचों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर इतना चाहिए। तीनों प्रकार के तिर्यंचों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर तो लिखा ही वहां पर, उत्कृष्ट अंतर। पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम है। इनमें से पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच सासाधन समय दृष्टि का अंतर कहते हैं। जैसे कोई एक मनुष्य नारकी अथवा देव सासाधन गुणस्थान के काल में एक समय अवशेष रह जाने पर पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। सासाधन का अंतर कहना है, पहले वो बात अलग थी क्योंकि उसका अर्धपुद्गल तिर्यंचों में घटित करना था तो उसको गिना था। अभी उसकी कंडीशन जरूरी नहीं है, केवल पंचेंद्रिय में ही रखना है, तो ऑलरेडी जन्म के साथ सासाधन में ही उसको जन्म हुआ है। तो एक समय में वो सासाधन से मिथ्यात्व में चला गया, यानी जब आया विग्रह गति में कहो तिर्यंच आयु चालू हो गई, एक समय में सासाधन रहा, दूसरे समय में मिथ्या दृष्टि हुआ, यानी सासाधन का अंतर चालू हो गया। इसलिए कहाँ से लाया उसको देखो, हाँ अन्य तीन में से तिरेंच में से तिरेंच नहीं अन्य में, क्योंकि उसका इसका काल मैक्सिमम रखना है ना उसको पंचेंद्रिय तिरेंचों का। तो कोई एक मनुष्य नारके अथवा देव सासाधन गुणस्थान के काल में एक समय अवशेष रह जाने पर पंचेंद्रिय तिरेंचों में उत्पन्न हुआ। उनमें 95 पूर्व कोटि काल से अधिक तीन पल्योपम बिताकर ये सामान्य तिरेंचों में ले रहे हैं। तिर्यंच यानी कि इसमें उसके केवल 8 भोग हो जाएंगे, इसलिए उसकी बात नहीं होगी यहाँ पर। 95 पूर्व कोटि काल से अधिक तीन पल्योपम बिताकर अंत में आयु का एक समय अवशेष रहने पर रह जाने पर उपशम सम्यक्त्व पूर्वक सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। यानी एक समय बाकी है तब सासाधन में आया, उसके पहले उपशम सम्यक्त्व किया उसने और मरण करके देव हो गया। इस प्रकार दो समय कम अपनी स्थिति, अपनी स्थिति का अर्थ क्या है, वो 95 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, ये उसकी अपनी स्थिति है। इसकी पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना ही लिया, तीनों प्रकार के नहीं लिए, ध्यान में आती बात। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में लिखेंगे तो बीच वाला अपर्याप्त का भव नहीं गिन सकते, 48 ही भव हो गए, और तिर्यंच यानी कि 8 ही भव हो गए, या असंगी संगी के मिलकर 8, 8, 16 हो गए, 15 और 3 ऐसा ले सकते उसमें। देखो अपनी स्थिति सासाधन गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर कहते हैं, ये भी सामान्य पंचेंद्रियों में लगा रहे हैं। देखो मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला कोई एक मनुष्य या संगी पंचेन्द्रिय तिर्यंच समूर्छिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, नहीं 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 कोई एक मनुष्य ही लिया, सॉरी मनुष्य वहां उत्पन्न किया, कहां पर? संगी पंचेन्द्रिय समूर्छनों में। मनुष्य मरकर क्यों उत्पन्न किया? क्योंकि हमें तिर्यंचों के बहुत ज्यादा कराने हैं, इसलिए अन्य गति में से मनुष्य एक कहां से आया? समूर्छनों में, तो ना देव से आ सकते हैं ना नारकी से आ सकते हैं, वो तो गर्भजों में उत्पन्न हो गए, इसलिए केवल मनुष्य लिया यहाँ पर। देव व नारकी गर्भजों में ही आते हैं। इसलिए देव नारकी को नहीं लिया, अकेले मनुष्य को लिया। तो मनुष्य कहाँ जन्मा? संगी पंचेन्द्रिय तिर्यंच समूर्छिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, एक अंतर्मूर्त हुआ। विश्राम ले, दूसरा अंतर्मूर्त हुआ। विशुद्ध हो, तीसरा अंतर्मूर्त। सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, साधी मिथ्या दृष्टि है, डायरेक्ट तीसरे गुणस्थान में गया, वहां पर भी अंतर्मूर्त रहकर फिर तीसरे में से वो पहले में आ गया, तो उसका अंतर चालू हो गया। चार अंतर्मूर्त के बाद अंतर शुरू हुआ, तथा अंतर को प्राप्त होकर 95 पूर्व कोटि काल प्रमाण उन्हीं तिर्यंचों में परिभ्रमण करके, अंतर को प्राप्त हुआ यानी मिथ्यात्व में भटका, 3 पल्लोपम की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न होकर और अंत में प्रथम सम्यक्त्व को ग्रहण करके, क्योंकि 3 पल्लोपम आयु वाला है मिथ्यात्व में रहा है, तो पल्ले के असंख्या तो बाल काल बीत गया, तो उसके उद्वेलना सब हो चुकी थी, अब उसको प्रथम उपशम ही होगा। प्रथम सम्यक्त्व ने प्रथम उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करके सम्यक मिथ्यात्व को गया, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। समझ में आई बात? अभी उसको ताबड़तोड़ तो नहीं मरेगा वो, पीछे जिस गुणस्थान से आयु बांधी थी उसी सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होकर देवों में उत्पन्न हुआ। क्योंकि सारे भूभूमि वाले मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि देव में ही जाते हैं, इसलिए देवों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तों से कम, वो अंतर्मूर्त बराबर लिखना, अपनी स्थिति ही इस गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर है। ये समझ में आई बात? इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों का उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि 47 पूर्व कोटियां और पूर्वोक्त 2 समय और 6 अंतर्मूर्त से कम 3 पल्लोपम काल इनका उत्कृष्ट अंतर होता है। देखो संगी के कैसे भव लेना है, 8-8 और असंगी के 8-8, तो 48 भव में से अंतिम संगी का भव 48वां 3 पल्ले का करना, तो 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले होता है। और यो देखो देख पर्याप्त लेना अपर्याप्त का नहीं लेना, तो 3 वेद में 8-8 और असंगी के 8-8, तो 24 हो गए, सॉरी 24 और 24 48 हो गए। तो 47 पूर्व कोटि और वो एक लेना 3 पल्ले। तिर्यंचनी में कैसे लेंगे हम? योनिमति में संगी के 8 और असंगी के 8, 16 हो गए ना, तो 15 पूर्व कोटि और 3 पल्ले। देखो यहाँ लिखा ना, इसी प्रकार योनिमतियों का भी अंतर जानना चाहिए, केवल उनके सम्यक मिथ्या दृष्टि संबंधी उत्कृष्ट अंतर में विशेषता है, उसे कहते हैं। मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला एक नारकी देव अथवा मनुष्य इसमें उत्पन्न हुआ। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमति मिला ना आपको, कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुआ, दो मास गर्भ में रहकर निकला, वो मुहूर्त पृथक्त्व से विशुद्ध होकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पश्चात मिथ्यात्व में जाकर, यानी अभी उसका सम्यक मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया, 15 पूर्व कोटि काल प्रमाण परिभ्रमण करके देव कुरु उत्तर कुरु इन दो भोग भूमियों में उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये तो तीन पल्ले वाली है ना, ये तीन पल्ले वाली भोग भूमि है, तीन पल्ले में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त, उसके पहले डालना है शब्द, एक वाक्य लिखना है यहाँ पर, ब्रह्मा यहाँ लिखा है ना, दो भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, यहाँ एक ऐड कर दो वाक्य जो ऊपर भी छठे लाइन में है, कुरु वेसु हुआ वन्नो छठी लाइन में, सम्मत्ते न वा मिच्छत्ते न वा अच्छीय अवसाने सम्मा मिच्छत्तम गदो, यानी उसका अर्थ ऐसा है, नीचे लिखना आप, सम्यक्त्व में या मिथ्यात्व में रहकर आयु के अंत में सम्यक मिथ्यात्व में गया। हाँ, उसके बाद इस प्रकार के पहले सम्यक्त्व में या मिथ्यात्व में रहकर आयु के अंत में सम्यक मिथ्यात्व में गया। हमें सम्यक मिथ्यात्व का अंतर चाहिए था ना, सम्यक्त्व प्राप्त करा सकते उसको भी। इस प्रकार अंतर प्राप्त हो गया। पश्चात जिस गुणस्थान से आयु को बांधा था उसी गुणस्थान से मरकर देव हुआ। अभी पहले आयु को बांधा था उसने सम्यक्त्व मिथ्यात्व में, इसी प्रकार तीन अंतर्मुहूर्त और मुहूर्त पृथक्त्व से अधिक, दो मासों से हीन पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक, यानी 15 पूर्व कोटि से अधिक तीन पल्योपम काल उत्कृष्ट अंतर होता है। यानी वो सासाधन का भी और इसका समय मिथ्यात्व का भी अंतर बता दिया उन्होंने। अभी हम यही रुकेंगे, इतना ही है। अच्छा, शंका समाधान कर लेते हैं। शंका, समूर्छिन तिर्यंचों में उत्पन्न कराकर पुनः समय मिथ्यात्व को क्यों नहीं प्राप्त कराया? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि समूर्छिन जीवों में स्त्री वेद का अभाव है। पर्याप्तों में उसको लिया, यहाँ नहीं लिया। फिर शंका, समूर्छिन जीवों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद क्यों नहीं होते हैं? स्वभाव से ही नहीं होते, वो तो नपुंसक वेदी ही होते हैं। यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो